कारवान कुरान लेक्चर नंबर 799 सूरत नजम आयत नंबर 31। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है वो अल्लाह ही का है, ताकि वो बुरा काम करने वालों को उनके कामों का बदला दे और नेक काम करने वालों को अच्छी जजा अता करे। सदकल्लाहुल अलीयुल अजीम। अपनी रविश के मुताबिक पहले इस आयत के हम तमाम अल्फाज का माना बयान करेंगे लफ्ज़ ब लफ्ज़, और उसके बाद इंशाअल्लाह इसका मफहूम और इसकी तफसीर आपकी खिदमत में अर्ज की जाएगी। पहला हर्फ इस आयत का है वाव। वाव यानी और। ये बात पहले भी इन दुरूस में तकरार हो चुकी है कि वाव का जो हर्फ है वो अरबी जुबान में सिर्फ और के माना में नहीं आता, अगरचे अक्सर जगह पर वाव का माना और ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वाव के और मानी दीगर मानी भी होते हैं कि इंशाअल्लाह जब उनके मोरद आएगा इस्तेमाल का तो हम उनकी वजाहत कर देंगे। अभी यहां पर इसका माना है और। अगला लफ्ज है लिल्लाह। इसके दो हिस्से हैं, ले और अल्लाह। ये दोनों मिलकर लिल्लाह लिखे और पढ़े जाते हैं, जैसा कि सूरह फातिहा के शुरू में अल्हम्दु लिल्लाह। ले का माना होता है के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हम्द अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है, यानी अल्लाह उसका साहिब है, अल्लाह उसका मालिक है। अरबी जुबान में जब किसी चीज की मिल्कियत भी बतानी हो तो वो भी इसी ले से बताई जाती है। मसलन हम कहते हैं अल किताब ली, ये किताब मेरी है। और उसी तरह जो मिसाल दी है अल्हम्दु लिल्लाह, हम सारी की सारी अल्लाह की है। तो यहां पर भी जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं कि उसका असल मालिक कौन है? अल्लाह है। बस ले यानी के लिए, और ये के लिए से मुराद मिल्कियत है, मुकम्मल इख्तियार उनका अल्लाह के पास है और असल मालिक तमाम चीजों का अल्लाह है। लफ्ज अल्लाह, इसका माना भी तवज्जो से इंशाअल्लाह सुनेंगे। लफ्ज अल्लाह असल में, यानी जो अरबी लुगत के माहिरीन हैं उनके मुताबिक, लफ्ज अल्लाह असल में था अल इलाह। इलाह अरबी जुबान में, मैं उसका माना भी बयान करता हूं, आमतौर पर माबूद जिसकी इबादत की जाती है वो माना भी हम बयान करते हैं। इलाह यानी माबूद, और जब इसके ऊपर अलिफ लाम आ जाए तो ये आम नाम को खास कर देता है, यानी खास माबूद। बाद में ये अल इलाह अपनी इस्तेमाल की कसरत की वजह से इतना ज्यादा बोला गया, इतना ज्यादा बोला गया कि अल इलाह की जगह अल्लाह बोला जाने लगा। बस अल्लाह असल में क्या है? अल इलाह। इलाह का माना क्या है? इलाह के जो हुरूफ असली हैं या जिनको हम बुनियादी हुरूफ कहते हैं वो है हमजा, लाम और हा। हमजा, लाम और हा के असल मानी क्या है, इसके बारे में दो नजरिए हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। बाज अहले लुगत के मुताबिक हमजा, लाम और हा का माना होता है घबराकर किसी की पनाह ढूंढना, घबराकर किसी की पनाह ढूंढना। तो फिर इलाह कौन हो जाएगा? इस असल माना की मुनासिबत से इलाह का माना क्या बनेगा? वो हस्ती कि जिसकी पनाह हासिल की जाती है खतरात में, घबराहट के वक्त, मुश्किलात के वक्त, ये माना बनेगा। और जिसकी पनाह इंसान जिसकी पनाह में जाता है जब भी मुश्किल में हो, जब भी घबराहट की और परेशानी की हालत में हो, गोया कि वो इंसान उस जात का गलबा और उसका इक्तदार भी कबूल कर रहा होता है। यानी मेरे बस में ये चीजें नहीं है, उसके बस में है, वो गालिब है, मैं इस मुश्किल पे गलबा नहीं पा सकता, उसकी पनाह में जाऊंगा तो वो मेरी मदद करेगा, वो मुझे अगर अपनी पनाह में ले लेगा तो इस मुश्किल से बच जाऊंगा। यानी वो हस्ती जिसका गलबा और इक्तदार कबूल किया जाए, और जब उसका गलबा और इक्तदार कबूल किया जाएगा तो फिर उसकी इताअत भी की जाएगी। यानी मैं उसको साहिब इख्तियार, साहिब कुदरत मान रहा हूं, जब मैं उसको साहिब कुदरत मान रहा हूं तो उसकी नाफरमानी भी नहीं करूंगा। और इसी से फिर परस्तिश का माना भी निकलता है, माबूद का माना भी निकलता है। यानी जिसको मैंने अपना सब कुछ मान लिया और उसको सबसे बड़ा गालिब और सबसे बड़ा साहिब इक्तदार मान लिया, उसी को अपना माबूद भी करार दूंगा। माबूद का लफ्ज अब्द से है, और हम पहले भी ये कारवान कुरान के दुरूस में बयान कर चुके हैं कि जो लफ्ज अब्द है, ऐन बा और दाल, इससे लफ्ज अबूदियत है। अबूदियत यानी गुलामी, अबूदियत यानी गुलामी, खिदमत, नौकरी। और अबूदियत का जो नुक्ता कमाल है उसे कहते हैं इबादत। हो सकता है इंसान दुनिया में किसी दूसरे के पास नौकरी करता हो, किसी दूसरे का गुलाम हो, जैसे कि गुज़श्ता जमानों में गुलाम बकायदा खरीदो फरोख्त होते थे, ठीक है। उस गुलाम जिसका भी होगा उसका हुक्म मानेगा। फारसी जुबान में गुलाम को बंदा कहते हैं, ठीक है। अब्द अरबी के लफ्ज अब्द का तर्जमा फारसी में क्या करते हैं? बंदा। और यही लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। उबूदियत का नुक्ता कमाल क्या है? उसे इबादत कहते हैं, और वो फकत उस इबादत की लायक एक जात है। इबादत की लायक फकत एक जात गिनी जाएगी। तो जिसको आपने मुकम्मल साहिब इक्तदार मान लिया है और मुकम्मल उसके गलबे और इक्तदार को कबूल और तस्लीम कर लिया है, इसीलिए आप मुश्किल में उसकी पनाह में जा रहे हो। और ये इस बात पर भी आप गौर करें कि कुरान मजीद इसकी तरफ तवज्जो दिलाता है कि जब तुम ऐन बीच समंदर में, तूफान में फंस जाते हो और हर तरफ से तुम्हारी उम्मीद कट जाती है, उस वक्त जिस जात का तसव्वुर तुम्हारे जहन में आता है कि वो तुम्हें बचाएगा, वो इलाह है, वो वाहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। तो यहां पर गलबा और इक्तदार कबूल करने से बाज़ औक़ात एक कमजोर इंसान एक ताकतवर इंसान की पास भी चला जाता है पनाह लेने के लिए। लेकिन वो पनाह के जो जब कोई पनाह ना दे सके उसकी पनाह रह जाए, ठीक है, जिसके इक्तदार के आगे हर इक्तदार हीच हो जाए, लाशय बन के रह जाए, कुछ भी नहीं उसका मुकाबला कर सके, उसका इक्तदार और उसका गलबा, ठीक है ना, ये कबूल करना मुराद है लफ्ज इलाह से। इस घबराहट से मुराद यह कि जिस घबराहट को और कोई दूर ना कर सके इस कायनात में, जिस परेशानी को और कोई दूर ना कर सके, तो वो जात कि जिसकी पनाह ली जाती है उसे कहते हैं इलाह। ये माना जारी है इंशाल्लाह। इसका दूसरा जो नजरिया है कि लफ्ज इलाह का बुनियादी माना क्या है, तो वो इंशाल्लाह हम आइंदा दर्स में इसको बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।